ओम शांति। आज हम सभी ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा की 13 नवंबर 1969 की अव्यक्त वाणी मिल करके सुनेंगे। हम अनुभव करते हैं कि हम सभी बाबा के कमरे में बैठे बाप दादा से ये वाणी सुन रहे हैं। बाप दादा की उम्मीदें अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता जाता है। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही तुम सभी बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। ऐसा अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलते हो। बाप दादा जब आते हैं तो किससे मिलने आते हैं? आत्माओं से। आत्माएं कौन सी? जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन श्रेष्ठ आत्माओं से बाप दादा का मिलन होता है। इतना नशा रहता है हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिमान के मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बाप दादा भृकुटी के बीच में चमकते हुए सितारे को ही देखते हैं। तुम सितारों को किस किस नाम से बुलाया जाता है? एक तो लकी सितारे भी हो और नैनों के सितारे भी। और कौन से सितारे हो? बाबा कहते जो कार्य अब बच्चों का रहा हुआ है उस नाम के सितारे को भूल गए हो। जो मेहनत का कार्य है वह भूल गए हो। याद करो अपने कर्तव्य को। बाप दादा के उम्मीदों के सितारे, बाप दादा के जो गाए हुए हैं वही कार्य अब रहा हुआ है ना? बाप दादा जो उम्मीदें बच्चों से रखते हैं, बाबा पूछ रहे हैं वह कार्य पूरा किया हुआ है? बाप दादा एक एक सितारे में यही उम्मीद रखते हैं कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए। एक से ही अनेक बनने हैं। यह चेक करो कि हम ऐसे बने हैं। अनेकों को बनाया है। उसमें भी क्वांटिटी तो बन रहे हैं, क्वालिटी बनाना है। बाबा कहते क्वांटिटी बनाना सहज है, लेकिन क्वालिटी वाले बनाना, यह उम्मीद बाप दादा सितारों में रखते हैं। अभी यह कार्य रहा हुआ है, क्वालिटी बनाना है, क्वांटिटी बनाना यह तो चल रहा है, लेकिन अभी ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं बनाने की सर्विस रही हुई है। बाबा कहते हैं क्वालिटी वाली एक आत्मा क्वांटिटी को आपे ही लाएगी। क्वालिटी वाली एक आत्मा क्वांटिटी को आपे ही लाएगी। एक क्वालिटी वाला अनेकों को ला सकता है। क्वालिटी क्वांटिटी को ला सकती है। अभी यही कार्य जो रहा हुआ है उसको पूरा करना है। अपनी सर्विस की क्वालिटी से आप खुद संतुष्ट रहते हो? बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं, अपनी सर्विस की क्वालिटी से आप खुद संतुष्ट रहते हो? क्वांटिटी को देख खुश तो होते हो, लेकिन क्वालिटी को देख सर्विस से संतुष्ट होना है। क्वालिटी कैसे लाएंगे? जितनी जिसमें डिवाइन क्वालिटी होगी उतना ही क्वालिटी वालों को लाएगी। कई बच्चों को सभी प्रकार की मेहनत बहुत करनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ में भी तो सर्विस में भी। कोई को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई को कम। बाबा पूछ रहे हैं इसका कारण क्या है? कभी उसी को ही मेहनत लगती है, कभी फिर उन्हीं को सहज लगता है, यह क्यों? धारणा की कमी के कारण बाबा कहते मेहनत लगती है। धारणा की कमी के कारण मेहनत लगती है। कई कर्तव्यों में तो लोग कह देते हैं कि इनके भाग्य में ही नहीं है, यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे। किस विशेष कमी के कारण मेहनत लगती है? श्रीमत पर चलना है, फिर भी क्यों नहीं चल पाते? कोई भी कार्य में, चाहे पुरुषार्थ चाहे सर्विस में, मेहनत लगने का कारण यह है कि बातें तो सभी बुद्धि में हैं, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते। महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती। मोटी बुद्धि होने के कारण बहुत मेहनत लगती है। बाबा कहते श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। महीनता में जाने का अभ्यास करना है। दूसरे शब्दों में यह कहेंगे कि जो सुना है वह करना है, अर्थात उसकी महीनता में जाना है। जैसे दही को बिलोर कर महीन करते हैं तब उसमें मक्खन निकलता है, तो यह भी महीनता में जाने की बात है। महीनता की कमी के कारण मेहनत होती है। बाबा कहते हैं महीनता में जाने की बजाय उस बात को मोटे रूप में देखते हैं। सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उसको सुनाए और उस में ना की महीनता में ले जाए तो उनको भी मेहनत कम लगे। सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उसको सुनाए ना कि महीनता में ले जाए तो उनको भी मेहनत कम लगे और अपने को भी कम लगे। इस महीनता की ही कमी है, अब यही पुरुषार्थ करना है। शारीरिक शक्ति भी कब आती है? बाबा पूछ रहे हैं शारीरिक शक्ति कब आती है। उत्तर है जब भोजन महीन रूप से खाओ तो उस भोजन की शक्ति बनती है। भोजन का महीन रूप क्या बनता है? खून। जब खून बन जाता है तब शक्ति आ जाती है। तो अब सिर्फ बाहर के ऊपर के रूप को ना देखते हुए अंदर जाने की कोशिश करो। जितना हर बात में अंदर जाएंगे तब रतन देखने में आएंगे और हर एक बात की वैल्यू का पता पड़ेगा। बाबा कहते जितना ज्ञान की वैल्यू सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा उतना आप वैल्यूएबल रतन बनेंगे। ज्ञान रत्नों की वैल्यू कम करते हो तो खुद भी वैल्यूएबल नहीं बन सकते। एक एक रतन की वैल्यू को परखने की कोशिश करो। एक एक रतन की वैल्यू को परखने की कोशिश करो। अब बाप दादा के वैल्यूएबल रतन हो ना। बाबा पूछ रहे हैं वैल्यूएबल रतन को क्या किया जाता है? छिपाकर रखना होता है। बाप दादा के जो वैल्यूएबल रतन है उनको बाप दादा छिपाकर रखते हैं, माया से छिपाते हैं। माया से छिपाकर फिर कहाँ रखते हैं? जितना जितना जो अमूल्य रतन होंगे उतना उतना बाप दादा के दिल तख्त पर निवास करेंगे। जब दिल तख्त नशीन बनेंगे तब राज्य के तख्त नशीन बनेंगे। तो बाबा पूछते संगम युग का कौन सा तख्त है? तख्त है वह बैगर हो, संगम युग पर कौन सा तख्त मिलता है? बाप दादा के दिल का तख्त। यह सारे जहान के तख्तों से श्रेष्ठ है। कितना भी बड़ा तख्त संगम युग में मिले लेकिन इस तख्त के आगे वह क्या होगा? इस तख्त पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती। इस पर उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा। इस पर रहने से माया के सर्व बंधनों से मुक्त रहेंगे। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।